समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल गतिविधियां होंगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, आज है रंगोत्सव यानी रंगों का पर्व होली, जो कि पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए परिक्रमा की पूरी टीम की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज के अंक में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार सईद, एंड we are just actually sending out greetings to our listeners. Hello, good afternoon. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM with me, Anita, and Athar Saeed. And for you, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes, and much more. All this over the next 30 minutes. We begin, as always, with the news headlines first.
भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान की कड़ी निंदा की।
इलेक्शन कमीशन आस्क्स ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू मिनिमाइज यूज ऑफ पेपर ड्यूरिंग लोकसभा पोल्स।
मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने से 14 लोग घायल।
फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली बींग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री।
मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्रों और सिक्किम में बारिश का अनुमान व्यक्त किया।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टू क्लैश विद पंजाब किंग्स इन बेंगलुरु दिस इवनिंग। And now time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level today. We talk about the significance of the festival of colors, Holi. A splash of colors and traditions of Holi characterized by its vibrant colors, gulal, customs, transcends mere festivities. It's a jubilant celebration of camaraderie and happiness. Holi commemorates various legends from Hindu mythology, including the playful exchange of colors between Lord Krishna and Radha, which is prominent, giving rise to the tradition of applying gulal during the festival of Holi. According to Hindu mythology, Radha was extremely fair and Lord Krishna had a dark complexion. Because of their different skin tones, Krishna often worried about whether Radha would accept him and complained to his mother, Yashoda. Yashoda once just in jest suggested that Krishna paint Radha's face with a different color to hide the color difference. Krishna did as his mother advised and used gulal to smear Radha's face, and that's how the celebration of Holi began.
देखो, ठीक कहा आपने। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है नीता। और इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित कर होली मनाते हैं और मिठाइयां खाई जाती हैं, गले मिले जाते हैं और जो परंपराएं हैं, जो आपस की भाईचारे की परंपरा है उसको और गाढ़ा करने का प्रयास किया जाता है। होली एक नाम से नहीं मनाई जाती, होली कई नाम से मनाई जाती है, क्योंकि भारत जो है विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। इस भारत रूपी गुलदस्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं। अब होली को ही हम बात करें तो होली को पश्चिम बंगाल में कहा जाता है डोल यात्रा या डोल पूर्णिमा, तमिलनाडु में जाए तो तमिलनाडु में कहा जाता है कॉमन पोडिगई, होला मोहल्ला कहा जाता है पंजाब में, कॉमन हवा कहा जाता है कर्नाटक में, बिहार में कहा जाता है फगुआ, रंग पंचमी कहा जाता है महाराष्ट्र में और गोवा में इसको पुकारा जाता है शिमोग के नाम से, और धुलेंडी कहा जाता है हरियाणा या फिर उत्तराखंड में भी। और इसके अलावा गुजरात का अगर हम रुख करें तो वहां पर कहा जाता है होली को गोविंदा होली और मणिपुर में योसांग होली। तो ये विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। रंग है मोहब्बत के, रंग है प्रेम के, रंग है गुलाल का और रंग है आपसी सौहार्द का। जी, तो ये होली है। होली के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं कि जो बचपन की हमारी होली थी, लेकिन अनीता मैं चाहता हूं कि बीच में होली का रंग भी तो उड़ना चाहिए,
है ना।
रंग बरसे भीगे
रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे और किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया ओ रंग रसिया रंग रसिया हो रंग बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
रंग बरसे और रंग बरस रहा है खूब जमकर बरसा है लेकिन अब तो समय है अनीता उस रंग को उतारने का
समेटने का
क्योंकि इस रंग के बाद इस रंग को उतारना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है तो बहुत सारी जो अच्छी क्रीम्स हैं उनकी मदद से आपको रंग उतारना चाहिए नहीं तो त्वचा के नुकसान होने का खतरा होता है और कई बार जो चीजें हैं उनको कभी अप्लाई ना करें कि जैसे डिटर्जेंट से हम धोने का और घिसने का प्रयास करते हैं बिल्कुल ना करें जो सही दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करें घरेलू जो टोटके हैं उनसे रंग उतारने का प्रयास करें और नहीं तो डॉक्टर के पास जाएं विशेष रूप से अगर आंख की कोई समस्या हो गई है तो भी
और सम एलर्जिक रिएक्शन इफ यू हैड ऑन योर स्किन
तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे अब शाम का समय है तो शाम के समय तो मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का समय हो जाता है और गुझिया जैसे आप मेरे लिए ढेर सारी गुझिया लाई हो तो एक दूसरे को गुझिया खिलाने का भी समय हो जाता है ना तो ये शाम का समय ये होता है। हमें बचपन की मुझे होली बड़ी खूब याद आती है जब शाम का समय होता था तो शाम के समय एक दूसरे के घर हम जाया करते थे वहां पर एक दूसरे को हम शुभकामनाएं देने के साथ साथ छक्कर खाया करते थे। जो मम्मियां होती थी जो आंटियां होती थी वो ढेर सारे पकवान खिलाया करती थी। एक और जानकारी मैं और दे दूं सुनने वालों के साथ चूंकि दिल्ली मेट्रो की लाइनें खुल चुकी हैं और 2:30 बजे से जो है सामान्य रूप से मेट्रो चल रही है ये सूचना देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह कि जो दिल्ली परिवहन निगम की बसेज हैं वो भी अब सामान्य रूप से चल रही है। और अनिता अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि क्या कुछ विशेष है उनके पास। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम अयोध्या चलते हैं और अयोध्या में भी देखिए होली का हम जिक्र कर रहे हैं तो अयोध्या में आज होली का उल्लास चरम पर है। संपूर्ण अयोध्या होली की उमंग में डूबी हुई है। प्रस्तुत है अयोध्या से हमारे विशेष संवाददाता राजेन्द्र सोनी की ये रिपोर्ट।
इस बार होली पर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद विजय स्वरूप निर्मित रामलला के मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से उपजा आनंद और खुशी अयोध्या में सर्वत्र व्याप्त है। नवनिर्मित भव्य और दिव्य राम मंदिर की पहली होली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और हर कोई रामलला के ललाट पर लगे गुलाल को निहारने को आतुर है। हो भी क्यों ना, भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला का अद्भुत अलौकिक विलक्षण और अद्वितीय होली जो मनाई जा रही है। भोर में ही रामलला को भव्य श्रृंगार के बाद दिव्य आभूषण पहनाए गए और फिर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ से आए हर्बल गुलाल लगाने के साथ ही 56 प्रकार के व्यंजनों और फलों का भोग लगाया गया तो मंगल ध्वनियों के बीच होली आधारित जय घोष से वातावरण गूंज उठा। ललाट पर लगे गुलाल से उपजी आभा देख ऐसा लगने लगा जैसे रामलला ने अभी अभी अवतार ले लिया हो। इसके बाद भक्तों में गुलाल और प्रसाद वितरित किया जा रहा है। यह सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। सरयू तट से लेकर रामलला के दरबार तक जन्मभूमि पथ हो, भक्ति पथ हो या फिर राम पथ हो, सभी रामलला की पहली होली पर श्रद्धालुओं के समर्पण को परिभाषित कर रहे हैं और दर्शन को लगी लंबी कतार श्रद्धालुओं के उत्साह और उमंग को बयां कर रही है। राजेंद्र सोनी, अयोध्या।
The Indian Army has launched Army Sports Girls Company ASGC at Army Sports Institute, Pune, to empower young female athletes for nurturing their talent in four sports disciplines of archery, athletics, boxing and weightlifting. More from our Pune correspondent.
The army has identified two of its centers of excellence for the operation of these companies. These are the Army Marksmanship Unit in Mahu and Army Sports Institute in Pune. The two chosen locations boast world-class training infrastructure, including sports medicine centers, rehabilitation facilities, and expert coaching. On the inaugural day of the first induction rally at Army Sports Institute, Pune, a remarkable 980 girls from across the nation actively participated in the selection trials, showcasing their determination and skill. This initiative, catering to girls aged 12 to 16, seeks to promote sports and provide a platform for them to excel in their chosen field. The selected girls will undergo rigorous training and compete at both national and international levels, offering them the opportunity to demonstrate their prowess and bring honor to the nation and the Indian Army through their medal-winning performances. Aside from bringing laurels through their medal-winning efforts, the selected girls will also be eligible for recruitment as direct entry non-commissioned officers and junior commissioned officers, in addition to enrollment as Agniveers. This commendable initiative not only empowers young female athletes, but also underscores the significance of gender equality and inclusivity in sports. The Army Sports Girls Company serves as a beacon of breaking barriers and nurturing talent, thereby contributing significantly to the holistic development of the sports landscape in India. The initiative fits in line with this year's Women's Day theme, as these role models are expected to inspire other incoming talent to strive and join for sporting glory in their respective fields. For Parikrama, Manoj Kshirsagar, Pune.
And now we go over to Andhra Pradesh, where Kaithiki Falls is one of the major tourist places in the state. The Kaithiki waterfalls are located in Alluri Sitaram Raju district. Our Vishakhapatnam correspondent has given more details on the waterfall's tourist attraction.
Kaithiki waterfalls is one of the tourist attractions for the tourists. The growth of tourism in Andhra Pradesh and increasing popularity of Vizag as tourist hub has been the attraction for tourists from the country and the world. Kaithiki Waterfalls is located in Alluri Sitaramaraju district of Andhra Pradesh. The waterfall is near to Burra Caves, 90 kilometers away from the city. These falls are amidst the lush greenery of the Eastern Ghats, which originates at River Gosani. The state's efforts to promote tourism brought the falls into limelight, which was earlier known to locals and adventurous travelers. The natural beauty of the waterfalls and their proximity to Arku Valley, a popular hill station, contributed to popularity among tourists. In recent years, there has been a push towards sustainable and eco-friendly tourism practices in the region surrounding Kaithiki Waterfalls. The local authorities and tourism operators are giving importance to sustain natural beauty and keep the area clean for future generations to cherish the beauty. Visiting Kaithiki Waterfalls is now easier with improved transportation links and the development of tourism facilities. The state tourism development authorities ensure efforts for tourist convenience and preserve the beauty and serenity of the falls. Kaithiki Waterfalls remain a cherished destination for those looking to connect with nature and experience the untouched beauty of Eastern Ghats. This is Padmaja signing off for Parikrama.
So, Kaithiki Waterfalls are worth a visit, I'm sure, Atar. And recently, Oral Health Day was observed throughout the world. That is, World Oral Health Day was observed. On this occasion, the Nehru Science Center in Mumbai, under the Ministry of Culture, organized an awareness session for children and their parents. Head of Department of Oral Medicine and Radiology, Nair Hospital Dental College, Brihan Mumbai Municipal Corporation, Mumbai, Sunali Karna addressed the session. Our correspondent, Prarthana, spoke to Dr. Sunali on different facts of oral health. So let's listen in.
All of us at some point have read about oral health. But as a doctor, could you please elaborate on the need for oral health and hygiene?
As we all know, the oral health is the mirror to the overall health. The oral cavity shows manifestations of many systemic diseases, and poor oral health and hygiene is the cause of many disorders in the body. Therefore, it is a fine equilibrium that needs to be appropriately maintained.
Doctor, so why do you think a lot of children have dental problems?
We need to understand that in the early stage of childhood, many children have oral health problems. This is because if we divide the stage into the infantile stage and the toddler stage, In the early childhood, the ability to clean and the ability to be able to keep the mouth free of harmful bacteria is very difficult, and usually because of, in some cases, out of parental negligence and the children not being able to brush regularly, properly, in the correct way, for the correct duration and appropriately 2 times a day, these problems do happen. And at this stage, the children may also be suffering from some underlying conditions like lack of calcium, that is hypocalcemia. So a lot of hypomineralization can be seen in their tooth structure. So there is deformity in the structure of the tooth, which makes it more susceptible to dental caries and disorders. So that is one more reason. And diet plays a huge role. So we have a lot of influx of processed food now, sugary food, aerated drinks, and sticky foods. These items are the root cause of the problem in children. And these cannot be cleaned out very easily by the children themselves. The need to enforce the fact that they need to have a healthy diet, including good amount of raw foods and leafy fruits and vegetables, high in vitamin C, vitamin A, is very important in the early childhood stage. Now, improper brushing has to be corrected also, and that is something which happens with parental guidance, and therefore the awareness needs to be increased at this stage so that the amount of disability is reduced when they grow up. Another thing which is important is the baby bottle syndrome, which is in the infantile stage, which is also called as rampant caries because of the nursing bottle caries.
Small children, those who are less than 3 years old, can they have dental problems?
In children less than 2 years, what we observe is the rampant caries and the nursing bottle caries. Due to the feeding with the bottles, there's pooling of the milk and sweetened milk especially, and people are not able to clean it at night. The children sleep overnight with it, and it causes rampant caries, and which causes a lot of disability in the milk teeth and the permanent teeth later, because their development is also affected. So this is the problem, which is the under 2 problem, and this should be avoided.
Thank you, Dr. Sonali.
In view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile, giving details of number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. First, let's go over to Karnataka, where the Lok Sabha elections will be held in 2 phases on April 26 and May 7 for 28 constituencies. The notification for the second phase election will be on March the 28th, and for the third phase will be April 12th. More from our correspondent.
In Karnataka, the Lok Sabha election arrangements are done in 2 phases, with 14 constituencies going to the polls in each phase. Out of 28 constituencies, 5 are reserved for scheduled castes and 2 for scheduled tribes. Out of 5.42 crore voters in the electoral roll, over 11 lakh are first-time voters, over 38,000 are PWD voters, and 5.70 lakh voters are above the age of 85. The highest electorate in the state is recorded in Bengaluru North Parliamentary Constituency and lowest in Udupi Chikmagalooru seat. The gender ratio has improved from 986 last year to 999 now, and electors to population ratio is 70.28%. There are 58,834 polling stations, in which 1,120 will be pink booths managed entirely by women, 224 each will be PWD and youth managed booths, 40 will be ethnic, and 200 theme based polling booths. Over 3 lakh polling personnel and security personnel are deployed for the election duty, with check posts open at every important junctions to ensure the model code of conduct. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
From Karnataka, we now go over to Tripura. Electioneering is gradually picking up in Tripura, with the election machinery stepping up activities by conducting training programs for the polling staff and micro observers. The state is going to poll in 2 phases on 19th and 26th of April. We have more in this report from our Agartala correspondent.
The number of eligible voters for the 2 Lok Sabha seats in Tripura stands about 28.57 lakhs. Out of the total 1,664 polling stations in Tripura West constituency, 1,506 polling stations are located in rural areas and only 158 polling stations are in urban areas. As the state politics revolves around tribal issues, it appears to have a bearing in the current parliament elections too. One interesting feature is that even though a large section of tribal population now and then have been living in remote areas and in scattered hamlets, their participation in electoral politics has been encouraging till date. In the current political scene, it is most likely that there would be a two-cornered electoral battle between two political blocs, namely BJP-led NDA and Congress-led India Alliance. Kunal Shinde, Agartala.
And now we take you on the journey of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember the Gandhian and freedom fighter Usha Mehta, who was born on the 25th of March 1920 at Surat.
From a young age, she found herself to be an active participant in the fight against British rule. In 1928, at the age of 8, she took part in her first protest against the Simon Commission. As a young child, she would protest in front of liquor shops and secretly distribute various publications. During the salt satyagraha, she would bring seawater to her home and produce salt out of that.
In 1939, Usha Mehta completed her graduation from Wilson College, Bombay, and began to prepare to study law. However, with the announcement of the Quit India movement in 1942, she decided to halt her studies and join the freedom struggle.
In the 1942 Congress session, Usha Mehta was privy to the powerful speeches given by Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and Sardar Vallabhbhai Patel. This gave her the impetus to organize a secret radio station and help deliver the Indian perspective to the remotest corners of the world.
On the 14th of August 1942, Dr. Usha, along with her associates, launched the first announcement of Congress Radio. In this show, she delivered the news bulletin in both English and Hindi. The show would commence with the song Hindustan Hamara and close with Vande Mataram. Despite the strict vigil maintained by the British authorities, her station fearlessly reported the atrocities committed by the British.
To remain underground, they needed to frequently change their positions so as to remain hidden from the British radar. During the Quit India movement, they had to change around 7 to 8 stations. On the 12th of November 1942, as they were hosting a show from Girgaon, the police arrested Usha Mehta along with her associates. She was sentenced to 4 years of rigorous imprisonment.
When she was released in 1946, she became the first political prisoner to be released in Bombay. When she was released, Dr. Usha said,
"I came back from the jail happy and proud because I had the satisfaction of carrying Bapu's message, do or die, and having contributed my humble mite to the cause of freedom."
On the 11th of August 2000, Usha Mehta passed away at the age of 80. Her zeal and enthusiasm to fight for her country is a true inspiration. We salute the daughter of the soil.
We also remember freedom fighter Vasantrao Lakangauda Patil. V.L. Patil was born on the 25th of March 1922 in Belgaum district of Karnataka.
Patil began his higher education at Rajaram College, Kolhapur, but was unable to complete his degree due to his involvement in the freedom movement. Vasantrao was instilled with the spirit of patriotism and social service by his teachers like Dr. M.R. Desai, Acharya Zavadekar, N.S. Hardikar and Barrister Khardekar. While in Kolhapur, Vasantrao came in contact with a radical freedom fighter Nana Patil, who further bolstered his decision to take part in the freedom struggle.
Under Nana's guidance, Vasantrao became actively involved in various activities in the surrounding regions. This led to the assassination of his younger brother, Pratap Rao. Due to the grief of losing his only brother, Vasantrao left college in 1943 and plunged into the freedom struggle. as Vasant Rao continued his activities with even more vigour against the British administration. He became one of the most wanted men in the region, leading to shoot-at-sight orders for him by the British administration.
Post-independence, V.L. Patil served as a Member of Parliament from 1962 to 1967. From 1969, he was elected to the Legislative Assembly of Karnataka multiple times and served as minister in various ministries till 1989.
He was awarded the Indira Gandhi Sadbhavna National Award in 2008 for the various social endeavours in his life.
V.L. Patil left for his heavenly abode on the 9th of December, 2012. We salute the great nationalist.
और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रन से हरा दिया। अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने मुंबई इंडियंस को 6 रन से पराजित किया। और अनिता, अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस।
जी
और श्रोताओ, आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं और उनको जिनकी है आज पुण्यतिथि, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी को, जो कि एक लीडर और निष्पक्ष पत्रकार तो थे ही, इसके साथ ही वे एक समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कलम की ताकत हमेशा से ही तलवार से अधिक रही है और ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल समाज को सुधारने में किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे ही पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी।
And today is also the death anniversary of Nanda or Nandini Karnataki, the Indian actress who appeared in Hindi as well as Marathi films. Regarded as one of the finest actresses of Indian cinema, her career spanned over 30 years and she is best known for her performances in Choti Behen, Dhool Ka Phool, Bhabhi, Kala Bazaar, Kanoon, Hum Dono, Jab Jab Phool Khile, Gumnaam, Ittefaq, The Train and Prem Yoga. I'm playing a snippet of a song from the film Jab Jab Phool Khile.
ये समां समां है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समां समां है ये प्यार का किसी के
She received her first nomination for Filmfare Award for Best Supporting Actress for Bhabhi and claimed the reason she did not win was lobbying involved. She played supporting roles as well in Devanand's Kala Bazaar also.
और आज एक और बड़ी ही जानी मानी अभिनेत्री निम्मी की भी पुण्यतिथि है। वे हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उनका असली नाम नवाब बानो था। उनके माता पिता थे अब्दुल हकीम और वहीदन और उन पर बहुत सारी फिल्मों के यादगार गीत फिल्माए गए हैं। निर्देशक के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड उनकी आखिरी फिल्म रही और उनकी चंद यादगार फिल्मों की बात करें तो बरसात, सजा, दाग, अमर, बसंत बहार, पूजा के फूल, हमदर्द, उड़न खटोला, सोहनी महिवाल, दाल में काला, कई सारी फिल्में हैं। उनके गीत का मुखड़ा सुनते हैं। और अब बात जन्मदिवस की, तो आज फिल्म जगत के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता फारूख शेख का जन्मदिवस है। वे न सिर्फ अभिनेता थे बल्कि समाजसेवी थे और साथ ही टेलीविजन के बहुत ही कामयाब प्रस्तोता भी थे। 70 और 80 के दशक की फिल्मों में अभिनय के कारण उन्हें कामयाबी मिली। एक फिल्म थी गर्म हवा, उससे उनको खास तौर पर एक पहचान मिली और अभिनेता के अलावा वो क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। उनकी फिल्म का एक गीत का मुखड़ा सुन लेते हैं। अनीता
जी,
उनकी की फिल्मों की बात करें तो गर्म हवा, चश्मे बद्दूर, शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, नूरी, किसी ने कहा, साथ साथ, लाहौर, ये जवानी है दीवानी और लाहौर के लिए उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और शताब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए अतहर सईद और अंगिता आनंद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।